हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कृषा और युग चाइना के लिए निकल चुके थे। वो वहाँ पर चाइनीज स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के लगभग 6 बजे शंघाई पहुँचे। वहाँ से उन्हें ताइयान विलेज पहुँचना था। उसके 1 घंटे का सफ़र करने के बाद भी उन्हें उस आदिवासी इलाके तक जाना था। उसके लिए उन्हें लगभग 2 से 2.5 घंटे तक का सफ़र गाड़ी में तय करना पड़ा। पूरे रास्ते कृषा सोई हुई थी, जबकि युग मलिक के साथ वहाँ के हर पल की खबर रख रहा था। उस दिन टेम्पल की पूजा होने वाली थी और खास लोकल फेस्टिवल भी था। फेस्टिवल की तैयारी करने वालों में युग के कुछ लोग भी शामिल थे जो चाइनीज थे। वो तीनों सुबह के लगभग 11 बजे के करीब उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहां शामिल होने के लिए युग और कृषा ने उन्हीं के हिसाब से कपड़े पहन रखे थे। फेस्टिवल में आते ही कृषा ने अजीब नजरों से चारों तरफ देखा और फिर युग से कहा, ये लोग हमें काट कर तो नहीं खा जाएंगे ना? वैसे भी चाइनीज लोग हमन फ्लैश भी कहते हैं। हाँ, खाने को खा सकते हैं, बट डोंट वरी, मेरे साथ होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इनसे ज्यादा बात मत करना और इनका दिया हुआ कुछ मत खाना। बाकी तुम अकेले जाकर फेस्ट इंजॉय कर सकती हो। ये लोग अननोन लोगों का भी दिल से स्वागत करते हैं, युग ने जवाब दिया और फिर कृषा को दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। कृषा अकेले जाते हुए हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर युग उसे छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। युग के जाते ही कृषा ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, ऐसे तो पूरे दिन कहता रहता है कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा, सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, ये वो, अब अनजान लोगों के बीच मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे तो इनकी लैंग्वेज भी नहीं आती है और कैसे फंक्शन एंजॉय करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कृषा वहां अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। तभी एक चाइनीज औरत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर अपने ग्रुप में ले गई। कृषा की नजरें इधर उधर युग को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं युग उससे अलग मलिक के साथ था। उसके हाथ में एक वॉच थी जिससे वो कृषा की लोकेशन का पता लगा सकता था। कृषा ने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था जिसमें ट्रैकर लगा था। ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी। मलिक ने युग से धीमी आवाज में कहा, सर, सब कुछ हो गया है। इनका फेस्टिवल रात के लगभग 1 बजे के करीब खत्म होगा, तब तक हम इंजॉय कर सकते हैं। बाद की पूरी प्लानिंग कर दी गई है। मलिक के कहते ही युग के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर कृषा की लोकेशन देखते हुए उसके पास चला गया। युग को अपने साथ देखकर कृषा ने भी सुकून की सांस ली। फेस्टिवल की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले टेम्पल की पूजा की और फिर बाद में वहाँ के लोगों ने अपना लोक नृत्य किया। डांस करने के बाद सबने उनका ऑथेंटिक चाइनीज खाना और ड्रिंक ली। इन सब में युग और उसके आदमी कुछ नहीं खा रहे थे। कृषा के लिए युग ने अलग खाना अरेंज करवा दिया था। फेस्टिवल रात के करीब 11 बजे खत्म हुआ, जहां पर लास्ट में टेम्पल में एक स्पेशल ड्रिंक चढ़ाने के बाद उन सब ने उसे पिया। ड्रिंक पीने के बाद वो सब गॉड के आगे फिर डांस करने वाले थे, लेकिन ड्रिंक पीने के लगभग 15 मिनट बाद ही उस फेस्टिवल में मौजूद सभी लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। कृषा उन्हें हैरानी से देख रही थी। उस फेस्टिवल में लगभग 1000 के करीब लोग इकट्ठा हुए थे। वो सब नीचे गिरे हुए थे। बाकी जो वहाँ होश में थे वो सब युग के आदमी थे, जो लगभग 50 के करीब थे। ये क्या किया तुमने इनके साथ? कहीं ये मर तो नहीं गए? कृषा ने युग की तरफ देखकर पूछा। मुझे इन्हें मारना होता तो इतनी देर टाइम वेस्ट नहीं करता। अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने को नहीं है, चुपचाप चलो मेरे साथ, युग ने सख्त आवाज में कहा और कृषा का हाथ पकड़कर उसे टेम्पल में लेकर गया। वो टेम्पल ज्यादा बड़ा नहीं था। सामने एक बड़े से गलियारे को पार करके वो लोग अंदर गए। वहाँ सामने एक बड़ी सी गोल्ड की मूर्ति रखी हुई थी जो उनके गॉड की थी। युग ने उस मूर्ति को उठाया और उसे साइड में रखने लगा। मूर्ति काफी भारी थी इसलिए उसे उठाने में थोड़ा टाइम लगा, फिर भी उसने ये अकेले कर लिया था। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया था वहां सायरन बजने लगा। बाहर मौजूद लोग बेहोश थे इस वजह से उनमें से कोई भी उठकर नहीं आया, लेकिन एक अनजान खतरा उनका अभी भी इंतजार कर रहा था जो उस सायरन के साथ अलर्ट हो चुका था। मूर्ति के हटते ही उन्हें एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। उसे देखते ही युग के फेस पर चमक आ गई थी। उसने मलिक की तरफ देखकर कहा, हम नीचे जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद तुम मूर्ति को वापस ऊपर रखोगे, ये काम कोई और भी कर सकता है, मैं आपको अकेले नीचे नहीं जाने दूंगा, आप जानते हैं नीचे खतरा है, मलिक ने जवाब दिया। मुझे किसी और पर यकीन नहीं है, जितना कहा है उतना करो, 1 घंटे के बाद हम उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ हमने डिसाइड किया है, अगर मैं ना भी आऊँ तो तुम निकल जाना, युग ने सख्त आवाज में कहा। मलिक कुछ कहता उससे पहले युग फिर बोला, इट्स माई ऑर्डर मलिक, मैं ना भी आऊँ फिर भी तुम एक घंटे बाद वहाँ से चले जाओगे। कृषा उन दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। उसे इतना पता चल गया था कि वो अगर इस रास्ते से अंदर जा रहे हैं तो वापस इसी रास्ते से बाहर आने का उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। कृषा ने घबराते हुए युग की तरफ देखा और कहा, तुम मूर्ति को वापस क्यों रखवा रहे हो? हम बाहर कैसे आएंगे? जब ये कह रहा है अंदर खतरा है तो इसे साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हो तुम? कृषा गलत टाइम पर गलत सवाल पूछ रही थी, इसलिए युग ने दर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे डांटते हुए कहा, अगर तुमने अपने डर पर काबू पाकर सही से ट्रेनिंग ली होती तो ये सवाल नहीं पूछती। अंदर खतरा है तो तुम्हें उससे निपटना आना चाहिए था। फिलहाल सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारी कौन सी एसेट कहाँ पर रखी हुई है और तुम कैसे उन तक पहुँच सकती हो, और सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो। युग के डांटने पर कृषा चुप हो गई थी। आज अगर सारा वहाँ होती तो उसे इस बारे में सब पता होता। मलिक को लगा कृषा को सब पता होना चाहिए, इसलिए युग के डांटने के बावजूद मलिक ने कृषा की बात का जवाब देते हुए कहा, ये दूसरे पड़ाव पर पहुंचने का रास्ता नहीं है, ये बस उस पड़ाव को बंद करने के लिए बनाया हुआ रास्ता है जिसके जरिए हमें जाना पड़ रहा है। हमें मेन रास्ता नहीं मिला है। आप लोग अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जिस रास्ते से आप लोग निकलोगे वो दूसरे पड़ाव तक पहुँचाने का रास्ता है। अब कृषा को सब समझ आ गया था और साथ ही ये भी कि वो अंदर किस खतरे की बात कर रहे थे। युग अपने साथ में किसी भी गार्ड को लेकर नहीं जा रहा था। उसने कृषा का हाथ पकड़ा और मूर्ति के नीचे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगा। अंदर की तरफ थोड़ा अंधेरा था और वो लोग काफी सारी सीढ़ियां उतरकर अंदर की तरफ जा रहे थे। कृषा को बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने युग का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उन दोनों के वहां से जाते ही मलिक ने मंदिर को वापस पहले की तरह कर दिया था। उन्होंने ड्रिंक के अंदर जो मिलाया था उसकी बची हुई ड्रिंक भी वहां से हटवा दी थी और उसकी जगह नॉर्मल ड्रिंक रखवा दी थी, ताकि बाद में किसी को शक न हो। पूरा काम करने के बाद मलिक आदमियों के साथ वहाँ से चला गया था। वहीं युग और कृषा अभी भी अंदर थे। युग अपने साथ में काफी सारी गन ले रखी थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम किस हिसाब से है। जैसे ही वो थोड़ा नीचे उतरे, युग ने अंदर की तरफ झांक कर देखा। वो एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी वहाँ लगभग 15 के करीब गार्ड्स थे जो अलार्म बजने पर अलर्ट पोजीशन में थे। पहले वहाँ ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब से युग ने पहले पड़ाव पर कब्जा किया था तब से मिस्टर सिंघानिया ने कुछ गार्ड्स को अंदर निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्हें देखकर कृषा ने डरते हुए दबी आवाज में कहा, चलो ना युग, यहाँ से चलते हैं, ये लोग हमें मार देंगे। युग ने कृषा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं पर उसका हाथ पकड़कर उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक गार्ड बोला, 10 मिनट पहले अलार्म बजा था, अब तक कोई नहीं आया। हम बेवजह इस अजीब बंद कमरे में पिछले 1 महीने से सड़ रहे हैं। अलार्म बजा है तो जरूर कोई बात है, तुम्हें इरिटेट होने का सैलरी नहीं मिलती। दूसरे ने उसे डांटा और सीढ़ियों की तरफ देखने जाने लगा। उसके उस तरफ आने की आहट सुनकर युग अलर्ट हो गया। वो दो लोग वहां आ रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, युग ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसकी गर्दन पकड़कर मोड़ दी। दूसरा गार्ड हरकत में आता उससे पहले युग ने उसके माथे के बीचोंबीच गोली मारी। उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। युग ने फिर झुककर बाहर की तरफ देखा तो वहां 4 गार्ड थे। वहीं से उसने दोनों हाथों में गन लेकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। साइलेंसर लगे होने की वजह से भले ही बुलेट की आवाज न आ रही हो, लेकिन जिसे भी गोली लग रही था वो चिल्ला रहा था। इसी के साथ बाकी गार्ड्स अलर्ट हो गए। वो जवाब में उनके ऊपर गोली चला रहे थे, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी और कृषा उसके पीछे थी। युग ने देखते ही देखते उन बचे हुए गार्ड्स का खात्मा कर दिया। युग ने तो बिना किसी डर के ये जंग जीत ली थी, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद कृषा डर से बेहोश हो चुकी थी। युग ने कृषा को देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम इन 7 पड़ावों तक पहुंचाने की चाबी नहीं होती तो बाय गॉड, इन लोगों से पहले मैं तुम्हारी जान लेता, कृषा सिंघानिया। युग ने आईज रोल की और कृषा को अपनी गोद में उठाया। उसे इस वक्त कृषा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। युग कृषा को लेकर आगे पहुंचा तो वहां एक बड़ी सी कांच की सेफ बनी हुई थी जिसके बीच में 10 डायमंड्स सिक्योरिटी के साथ रखे हुए थे। ये कोई आम डायमंड्स नहीं थे, बल्कि वो रियल डायमंड्स थे जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। डायमंड्स के बारे में गवर्नमेंट तक को पता नहीं था। ये पुराने टाइम के बेशकीमती खजाने से चुरा कर या स्मगल करके वहाँ पर रखे गए थे। उन्हें देखकर युग के फेस पर स्माइल आ गई और उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता बाकी असेट्स में ऐसा क्या मौजूद है, लेकिन इन सबको मैं कब से पाना चाहता था। ये सच में बेशकीमती है, लेकिन इतने कीमती डायमंड्स को सिर्फ दूसरे पड़ाव में क्यों रखा गया? क्या आगे के पड़ाव और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं या उनमें इससे भी महंगे असेट्स होंगे? युग उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था। युग को कृषा की रेटिना स्कैन करके लॉक खोलना था, लेकिन वो बेहोश थी। युग ने इधर उधर देखा तो उसे पानी की बोतल मिल गई। उसने कृषा पर पानी के छींटे डाले। वो होश में नहीं आई तो उसने पूरे पानी की बोतल उसके मुंह पर उड़ेल दी। इससे कृषा को होश आ रहा था। वो हड़बड़ाते हुए उठी। इससे पहले कि कृषा कुछ पूछती, युग जल्दी से बोल पड़ा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बोलते हुए युग ने कृषा को उठाया और उसका चेहरा सेफ के डोर के आगे कर दिया। जल्द ही दरवाजा खुल चुका था। फिर उसने कृषा के फिंगरप्रिंट से मेन सेफ का दरवाजा खोला। युग ने जल्दी से डायमंड्स को चेक किया, फिर उसके बॉक्स को उठा लिया। इसे हम अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हैं? पिछली बार तो हमने सब कुछ वहीं पर छोड़ा था, कृषा ने हैरानी से पूछा। क्योंकि पहले पड़ाव की सिक्योरिटी चेंज की जा सकती थी, इसकी नहीं की जा सकती है। मुझे इन्हें अपने साथ ही ले जाना होगा। अब चलो मेरे साथ, युग ने जवाब दिया। उसने कृषा का हाथ पकड़ा और उस पड़ाव का मेन दरवाजा ढूंढने लगा। उसने देखा आगे चलने पर कुछ सीढ़ियां बनाई हुई थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। उन्होंने वो सीढ़ियां ली और थोड़ी दूर और आगे गलियारे में चले तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा था, लेकिन वो बंद था। लगता है हम यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम अंदर से ये दरवाजा खोल पाएंगे, कृषा ने उस दरवाजे की तरफ देखकर कहा। पहली बार युग को कृषा की बात में पॉइंट लग रहा था। वो दरवाजा बाहर से खुलता था और बाहर भी आदित्य सिंघानिया की टाइट सिक्योरिटी थी। ये सच था कि युग और कृषा अब अंदर फंस चुके थे। वहीं एक घंटा कब के बीत चुके थे। मलिक को युग का ऑर्डर फॉलो करना ही था। वो उसका वेट करना चाहता था, लेकिन युग का ऑर्डर्स फॉलो करते हुए मलिक को वहां से जाना ही पड़ा। क्लाइन क्लाइन।